तो नमस्कार, आप सुन रहे हैं मोबाइल वाणी। मोबाइल वाणी के लिए मैं दिनकर पातुरकर। आज हमारे साथ जलवायु परिवर्तन के विषय पर विशेष रूप से आमंत्रित है संसद विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय चौड़े जी। नमस्कार चौड़े जी।
नमस्कार भैया।
चौड़े जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से आम जनमानस में किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है।
जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी समस्या है। आज हमारा खान पान, रहन सहन, पीने की पानी की व्यवस्थाएं सब जो है वो दूषित होते जा रही है। हमारा जो संकट बढ़ते जा रहा है, जिसको लेकर सभी लोगों को, जनता को जागरूक होने की जरूरत है और विशेषकर जो है सरकार को भी इसमें संज्ञान में लेने की आवश्यकता है।
चौड़े जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जलवायु परिवर्तन के लिए विशेष रूप से कौन से कारक जिम्मेदार है।
कारक जिम्मेदारी है कि जितने हमारी विषैली दवाओं का हम स्प्रे कराते हैं खेतों में, रासायनिक खाद दवाओं का, उससे आजकल कैंसर बढ़ रहे हैं, आजकल पानी दूषित हो रहा है, बाथरूम शौचालयों का पानी नदी नालों में मिल रहा है, बहुत सारे कारण जो है परिवर्तन के हैं ये, और जिसके कारण मानव शरीर के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है इसका।
चौड़े जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि जहां एक ओर जलवायु परिवर्तन का असर मानव जीवन पर पड़ रहा है और मनुष्य स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, इसके लिए विगत कार्यकाल में ग्राम पंचायत रामाकोना के जनप्रतिनिधियों ने रोगी कल्याण समिति के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में एक प्रस्ताव पास किया था कि रामाकोना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 30 बेड में परिवर्तित किया जाए, और आज चूंकि अस्पताल बन भी चुका है और हाल ही में विकास यात्रा के दौरान उसका लोकार्पण भी किया गया है, जबकि इस अस्पताल का भूमि पूजन आपके माध्यम से हुआ था, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अस्पताल में कितने बेड है, कितने का स्टॉक रहेगा, इसकी स्वीकृति क्या है और लागत कितनी है।
इसकी जो है कमलनाथ जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो 3 जगह अस्पताल स्वीकृत हुए थे, रामाकोना, लोधीखेड़ा और मोहगांव। इसमें 1,25,00,000 की लागत से एक अस्पताल बना है और भूमि पूजन भी मैंने कराया था। पर दुर्भाग्यवश जो है भारतीय जनता पार्टी झूठा श्रेय लूटने का काम करती आई है, हमेशा यही करती है, काम कुछ नहीं करेगी, विकास कुछ नहीं होगा और विकास यात्रा निकाल रही है। तो जिसको लेकर के जो है 30 बेड का अस्पताल जो है आज आपके वहां बनकर तैयार हुआ है रामाकोना में, और इसमें जो है सभी सुविधाएं होगी, पर दुर्भाग्य है कि वहाँ पेयजल की व्यवस्था ही नहीं है। और ये सब संचालित कराए सरकार, क्योंकि आज भाजपा की सरकार है और बहुत सारा हमने प्रयास किया। हम कभी श्रेय लेने की राजनीति नहीं करते, पर बीजेपी जो है हमेशा झूठा श्रेय लूटने का काम करती है, ये हमने किया, ये हमने किया। जब 15 साल तक भाजपा के विधायक और मंत्री यहाँ से सत्ता में थे, उसके बाद भी उन्होंने 15 साल कुछ नहीं किया और अब श्रेय लूट रहे हैं कि अब हमने किया। जनता ने सवाल पूछना चाहिए कि आपको भी 15 साल का मौका दिया, आपने 15 साल क्या किया।
चौड़े जी, जैसा कि आपने बोला कि भाई पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के कार्यकाल में इस अस्पताल की स्वीकृति मिली थी, हालांकि इस अस्पताल के लिए रोगी कल्याण समिति के सदस्य ज्योति सुनील राठौर, ग्राम पंचायत के सरपंच किरण कुमार धुलवे, उप सरपंच मुन्ना भाई अब्दुल कलाम अंसारी एवं जनपद सदस्य सुमन पाथुरकर ने डीओमओ एन के शास्त्री साहब की उपस्थिति में प्रस्ताव पास किया था, और चूंकि 30 बेड का था लेकिन यह बना 20 बेड का, और वो भी आपके कार्यकाल में बना, आप वर्तमान में क्षेत्रीय विधायक हो, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अस्पताल की बाकी व्यवस्थाएं कब तक पूर्ण हो पाएगी।
हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, ऊपर भी सरकार को भी चिट्ठी लिखेंगे कि जो जो व्यवस्था है वहां पर संचालित नहीं है, डॉक्टर की भारी कमी है, बिल्डिंगें तो बन गई है, बिल्डिंगें बन जाती है, भवन बन जाते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि वहां पे मूलभूत सुविधाएं होना चाहिए, अस्पताल में डॉक्टर होना चाहिए, दवाइयों का अच्छा वितरण होना चाहिए, मेडिसिन अच्छी होनी चाहिए, सब चीजें, सारी व्यवस्थाएं अच्छी रही, स्टाफ अच्छा रहा तो लोग मरीज जाएंगे वहां पर। और ये दुर्दशा पूरे प्रदेश की स्थिति है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉक्टर नहीं है अस्पतालों में, दवाइयां नहीं मिल रही ठीक से, बहुत विसंगतियां हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस की सरकार जैसी बनेगी, इस पर हम जितनी भी समस्या है, तकलीफ है, दूर करेंगे।
चलो जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जहां एक ओर सत्ता पक्ष विकास यात्रा निकाल रही है, वहीं विपक्ष हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है, और हाथ जोड़ो यात्रा में क्योंकि आप भी ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच रहे, तो हाथ जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है।
हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का मतलब ये है कि हम पूरे देश में जो नफरत का माहौल फैला हुआ है, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद के अलावा और भाजपा के लोगों को कुछ नहीं दिखता, राजनीति हो रही धर्म के नाम पर। हम चाहते कि हमारा देश सर्वधर्म समभाव वाला है, यहाँ पर सबको रहने का अधिकार है, सबको जीने का, खाने पीने का अधिकार है। ये सर्वधर्म समभाव वाला, सभी जाति धर्म समाज के लोग प्यार मोहब्बत से रहे इस देश में, यही एक हमारी यात्रा का संदेश है। और भाजपा की जो जन विरोधी किसान विरोधी नीति है उसको हमको उजागर करना, ये मुख्य उद्देश्य है।
चौड़ा जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में जगह जगह पहुंच रहे, और
जी
जबकि हमारा विषय आज देश ही में नहीं तो संपूर्ण विश्व में जलवायु परिवर्तन से बहुत बड़ी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, तो ये चिंता से निपटने के लिए आप मोबाइल वाणी के माध्यम से जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे?
हम जनता से अपील करते हैं कि वो अच्छा खान पान रखें, शुद्ध जल पिए। आजकल जो वायु दूषित हो गई है उसके कारण जो है बहुत सारे दुष्परिणाम हो रहे हैं। खान पान में अच्छा जो है हेल्दी फूड खाएं और विष रहित भोजन करें हम, जैविक उत्पादकों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बचा जा सके। तो जनता से मेरी अपील यही है कि हम स्वयं अपना ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें।
हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की दिशा में सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है?
सरकारें जो है वो केवल कागज में योजनाएं बनाती हैं, सरकार जो है केवल विज्ञापनों पर पैसा खर्च करती है, पर वास्तविक रूप से मूल रूप से धरातल पर कुछ काम नहीं हो रहे। वास्तविकता ये है कि जन जागृति अभियान चलाना चाहिए, गांव गांव में इसकी संदेश प्रचार प्रसार हो, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत के माध्यम से लोगों के अंदर जागृति पैदा करना चाहिए, लोगों के अंदर मोटिवेशन पैदा करना चाहिए, तब जाकर के ये सब चीजों को लोग अवेयरनेस आएगा और लोग इसको स्वीकार करेंगे।
चौड़ा जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे संसद विधानसभा क्षेत्र के पूर्व मंत्री स्वर्गीय रघुनाथ जी चौड़े ने नारा दिया था, आदमी नहीं आज उनका काम बोलता है, और चूंकि आप उनके पुत्र हो और वर्तमान में एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन भी हो, तो जलवायु परिवर्तन की दिशा में आप अपनी ओर से क्या कदम उठाना चाहोगे?
हमारा हमेशा प्रयास रहेगा कि लोगों की भावनाएं जो है, लोगों के विचारों तक हम पहुंचे, लोगों को जागरूक करें, लोगों के जो बातें हैं उनको हम समझें और लोगों को ये समझाएं कि जलवायु परिवर्तन हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है, जिसको जो है हम स्वयं अपने अनुसरण करें, मन के अंदर, शरीर के अंदर, और इसका जब हम खुद अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों में परिवर्तन आएगा।
आपसे एक अंतिम प्रश्न, जहाँ जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए शासन अपने स्तर पर वृक्षारोपण जैसे कदम उठा रहा है, लेकिन देखने में आ रहा है कि अवैध कटाई और अवैध उत्खनन बहुत अधिक मात्रा में हुआ है, जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य कारण साबित हो सकता है, इस संबंध में आपका क्या कहना है?
दोनों मुख्य कारण है हमारे क्षेत्र में, जो कन्हान नदी का अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है, पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है, हम वृक्ष लगा रहे हैं 50 और कट रहे हैं 500। ये स्थितियां बहुत गंभीर हैं, जिसको लेकर के शासन प्रशासन जो है वो बिल्कुल मौन है, जिसको लेकर के वास्तव में चिंता का विषय है। और इसके कारण जो है हमारा जल का स्तर गिरते जा रहा है अवैध उत्खनन से, और बहुत सारे जनप्रतिनिधि, समाज सेवी लोग उठा रहे हैं इसको बार बार मुद्दे पर, लेकिन सब मिलीजुली साठगांठ से ये काम चल रहा है, पर ये चिंता का विषय है और निश्चित रूप से कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे।
अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि वैज्ञानिक केंद्र छिंदवाड़ा से हमने जब एक साक्षात्कार लिया उनसे, तो उसमें एक बात
जी
सामने आई कि भाई समुद्र की सतह तक अब बोर होने लगे, यानी इतना जल स्तर नीचे चले गया है, तो हम आपसे ये जानना चाहते कि जल स्तर को यथावत रखने के लिए शासन ने और जनमानस ने क्या प्रयास करना चाहिए?
सबसे बड़ी समस्या है हमारा जल स्तर दिनों दिन घटता जा रहा है। पहले हम ट्यूबवेल करते थे तो 100-200 फीट में पानी लगता था, आज 1000 और 1500 फुट करने के बाद भी पानी नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी भीषण समस्या है जल की, और इसको वाटर हार्वेस्टिंग है, बड़े बड़े डैम है, अवैध उत्खनन रोकने की जरूरत है, बहुत सारे कारण है जिसको किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सरकार की मंशा होनी चाहिए कि अच्छे स्टॉप डैम बनाए जाए, छोटे छोटे तालाब बनाए जाए, केवल कागजों में बन जाते हैं पर धरातल पर कुछ नहीं होता, सच्चाई ये है। इसको लेकर के सरकार ने गंभीर होना की जरूरत है, और जब तक सरकार गंभीर नहीं होगी तब तक के वाटर रिचार्जिंग और वाटर हार्वेस्टिंग पे काम नहीं हो सकता।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका कि आपने छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के माध्यम से रूबरू होकर जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखी, वही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के संबंध में भी अपनी विस्तृत जानकारी दी। इसके लिए मोबाइल वाणी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।